Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare,
Krishna, Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama, Rama, Hare Hare,
Rama, Rama, Hare Hare,
Hare Krishna. Radha Gokulan Mandir, ISKCON, Belgaum. तो श्रीमद् भागवत पांच दिन से हम पहले अध्याय पहले स्कंद के पहले और दूसरे अध्याय का चर्चा कर रहे थे और ऋषियों के प्रश्नों के उत्तरों को हमने रात सुना था कि सब जीव सब मानव मात्र का श्रेय मात्र उत्तम उद्देश्य है भगवान के चरणों में प्रीति जो भगवान के चरणों में प्रेम जो सबके हृदय में है वो प्रकट हो जाए। तो सारे शास्त्रों का सार है कि जो प्रेम सबके हृदय में उसको प्रकट करने का उसको उदय करने का जो साधन है वो एकमात्र शुद्ध भक्ति है। जो एक ही धर्म जो सब मानव जाति के लिए है वो है भगवान की प्रेममयी सेवा जिसको कहा जाता है भक्ति। अब वो भक्ति हम वैसे जानते हैं कि भक्ति नवधा भक्ति है, भक्ति के नौ अंग हैं। लेकिन सबसे पहला अंग जो भक्ति का है वो है श्रवण या सुनना। और सुनना क्या चाहिए ये एक प्रश्न है, सुनना किससे चाहिए ये दूसरा प्रश्न है, क्या सुनना चाहिए किससे सुनना चाहिए और सुनने में हमको रुचि कब होगी और कैसे होगी। सुनने में हमें शौक हो सुनने का, रुचि हो, टेस्ट हो सुनने की, वो कैसे प्राप्त हो, कब प्राप्त होगी। तो ये कुछ प्रश्न है भक्ति के पहले ही एक अंग के लिए। तो सूत गोस्वामी ऋषियों को कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य तत्व जिज्ञासा है। मानव शरीर में ये जानने का प्रयास करो कि परम तत्व क्या है, परम सत्य क्या है, सदा रहने वाली चीज क्या है और नाशवंत क्या चीज है। जो सदा रहने वाली चीज है उसको प्राप्त करना अथवा उसको संतुष्ट करना सारे वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य है। यह जो वर्ण आश्रम व्यवस्था भगवान ने भगवत गीता में कहा है, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के अनुसार, गुण और कर्म के अनुसार चार वर्णों का विधान भगवान ने बनाया है। लेकिन चारों वर्णों का एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी हरि तोषणम, भगवान की संतुष्टि के लिए काम करें। और भगवान की संतुष्टि किसमें, भगवान के शास्त्र का पालन करें। और भगवान के शास्त्र का पालन करने का साधन क्या है, भगवान के भक्तों की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालें। तो अंत तो गत्वा जो मुख्य चीज है वो है भक्तों का संग। तो अब यहाँ सूत गोस्वामी एक श्लोक कह रहे हैं सबके लिए, तो आइए उस श्लोक का अर्थ समझते हैं। तस्माद, तस्माद का मतलब इसलिए, क्योंकि सब वर्ण आश्रम का, सब स्त्री पुरुष का, सब मानव जाति का, सब देश में, सब काल में और सब स्थिति में एक ही कार्य है। वो एक कार्य क्या है सुन लीजिए, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। तस्माद इसलिए, क्योंकि सबको एक ही चीज सुखी करेगी, आत्मा प्रसन्न एक ही काम से होगी। तो वो काम क्या है, इसलिए एकेन मनसा। एकेन मनसा का मतलब एकाग्र मन से, और एकाग्र मन का अर्थ क्या है, एक का आगार मन हो जाए। आगार कहते हैं डेपू को, ये बसों के ऊपर लिखा होता है कि कौन से आगार की बस है। आगार मतलब डेपो, मतलब जो मन है उसके अंदर एक ही भगवान के विषय में सारा चिंतन चलता है, उसको एकागर कहते हैं। एक आगार एकागर। तो जो भी मन की प्रक्रिया है, सोचना, विचार करना, संकल्प, विकल्प, भावनाएं जो भी मन में उठती हैं, वो सब एक भगवत संबंधी हो। एकेन मनसा भगवान, और भगवान का एक विशेषण देते हैं, सात्वताम पति ही। सात्वत कहते हैं भगवान के भक्तों को, जिन्होंने सत्य का आश्रय लिया है वो सात्वत। सात्वत मतलब जिसने सत्य का आश्रय लिया है, और सत्य परम सत्य भगवान स्वयं है, और जो हम ये सत्संग कर रहे हैं ये ही सात्वतों की पहचान है। सात्वत वो जो सत्संग में सदा रत रहे, वो सात्वत। सत्संग मतलब भगवान के साथ संग, जो भगवान के साथ संग करे वो सात्वत। और जो सात्वत उनका पति, मतलब जिसको पति, स्त्रियां पति किसको कहते हैं, जिसको सारा जीवन समर्पण करते उसको पति बोलते हैं। तो भक्त जिसने अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है उसकी सेवा के लिए, उस भगवान को भक्तों का पति मान। जैसे जगन्नाथ, नाथ भी पति का भी दूसरा नाम है नाथ, प्राणनाथ। ये तो संसार में सब प्राण पीने वाले हैं, प्राणनाथ एक भी नहीं है। प्राणनाथ तो भगवान है एक, बाकी सब प्राण पीने वाले। तो प्राणनाथ या सात्वताम पति, भक्तों का पति का एक अर्थ है जो भरण पोषण करे, भरण पोषण करे, देखभाल करे, सुरक्षा करे, उसके सारे जवाबदारी उठाए। तो ये भगवान ने भक्तों की सारा भार अपने ऊपर उठा लिया है, इसलिए भगवान को सात्वताम पति कहते हैं। भगवान ने अपने भक्तों का सारा भार उठा लिया है भक्तों को, इसलिए भगवान ने क्या कह दिया, योग क्षेमम वहामि अहम। भक्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है मैं लाके दे दूंगा उनको, जो है उसकी मैं चौकीदारी करता रहूंगा, मैं उसकी रक्षा भी करूंगा। तो सात्वताम पति की परिभाषा ये है, जो अपने भक्तों का भरण पोषण करे, उनके सब दुख सुख में और उसके हर हाल में उनका पालनहार हो, उसको सात्वताम पति कहते हैं। तो ऐसा सात्वताम पति है, उसके विषय में क्या करना चाहिए, श्रोतव्यम सुनना चाहिए, कीर्तत्व्यम कीर्तत्व्यस उसका कीर्तन करना चाहिए, ध्येयस पूज्यश्च नित्यदा प्रतिदिन उसका उसकी कथा सुननी चाहिए, उसके नाम का कीर्तन करना चाहिए, उसके गुणों का ध्यान करना चाहिए, उसके लीलाओं का ध्यान करना चाहिए, और नित्य उसकी पूजा करनी चाहिए। ये चार काम, इन चार कामों के उद्देश्य से ही इस संस्था आपकी, ये कृष्ण भावना अमृत संघ, इसका ये चार ही उद्देश्य है। ठाकुर जी के बड़े बड़े मंदिर स्थापित किए जाते हैं विश्व भर में ताकि पूजा हो। सुबह और शाम भागवत और भगवत गीता का सत्संग किया जाता है ताकि भक्त सुने, और सुबह और शाम कीर्तन किया जाता है भगवान की महिमा का। और ये तीन काम करने का एक ही उद्देश्य है कि हर वक्त हमारा ध्यान भगवान के गुण रूप लीला नाम के चिंतन में लगा रहे। तो इन चार उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ये संस्था विश्व में मानव कल्याण का कार्य कर रही है। उत्तम जो मानव का लक्ष्य है उसको प्राप्ति करने की सहायता का कार्य कर रही है। यही सारे जीवों का एकमात्र लक्ष्य है, सबका एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी आत्मा आनंदित हो, जीवन सुखी हो। तो सुख संसार को सुखमय जीवन देने के लिए इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। जीव जो सुख के नाम में दुख भोग रहे हैं उनको असली सुख का अनुभव कराने के लिए ये चार कार्य विश्व भर में संस्था के माध्यम से आपके आपकी संस्था के माध्यम से विश्व कल्याण के हो रहे हैं। श्रवण, कीर्तन, ध्यान और पूजा, ये काम जो करे वो समझो मानव का हितकारी है। बाकी सब काम करे वो मानव का असली हितकारी नहीं है। उतनी हो सकता है कि तत्कालीन तो किसी को सहायता कर सके, लेकिन जो जो स्थाई लोगों का और परमानेंट जिसमें लाभ है वो ये चार कार्य हैं। जो संस्था ये कार्य करती है वही लोग का कल्याण करती है, ये मानना चाहिए। तो ये चार काम निश्चित रूप से करना चाहिए। और एके मनसा का मतलब है केवल प्रेम भक्ति, प्रेम से भगवान का कथा का श्रवण करें तो भी प्रेम से करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करें तो भी प्रेम से करना चाहिए, भगवान का ध्यान करें तो भी स्नेह से करना चाहिए, और भगवान की पूजा करें तो अति मधुर भाव से करें। तो इन सब में न कुछ हमारे को पाने की इच्छा हो तो कर्म नहीं होगा, और न कोई दुनिया को दिखाने की इच्छा हो तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान दूसरे दुनिया को दिखाने के लिए होता है और कर्म कुछ पाने के लिए होता है। भाई मैं ज्ञानी हूँ ये तो दिखाने के लिए हो गया ना, और मुझे कुछ पाना है तो कर्म हो गया। न पाने के लिए हो न दिखाने के लिए हो, केवल अपने आत्मा के आनंद, आत्मा की संतुष्टि के लिए हो, आत्म संतुष्टि के लिए ये कार्य किया जाए। अब से मैं प्रश्न पूछता हूं, इतना सारा आप सब मेहनत कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौकरी करने वाले, खेत में घर में काम करने वाले, आपके अंदर में संतुष्टि होती है, लगता है कि बस हम ठीक कर रहे हैं, ऐसे कभी आपको अनुभव होता है? इतनी उम्र बीत गई है, कोई ऐसे कह सकता है कि मैं जो कर रहा हूं इससे मैं संतुष्ट हूं? हाँ, संतुष्टि का अनुभव होता है जीवन में, क्यों नहीं होता है? कभी इसके ऊपर भी चिंता करनी चाहिए, हमें संतुष्टि कहाँ होगी? आत्म तृप्ति, आत्मरति, आत्म संतुष्टि, ये तीन शब्द हैं। संतुष्टि भी आत्मा के स्तर पे होती है, आत्मरति भी आत्मा के स्तर पे होती है, आत्मरति, आत्म संतुष्टि, आत्म तृप्ति। तृप्ति, संतुष्टि और रति, ये तो तीनों आत्मा के स्तर के चीजें हैं, ये शरीर और मन के स्तर की चीजें नहीं है। इसका अर्थ है जो चीज, इसलिए पूछा भी ये गया है कि आत्मा को आत्म सुप्रसिद्धते, आत्मा जिससे प्रसन्न हो जाए, प्रसन्नता, तो ये आत्मा की स्तर की चीज है। और इस आत्मा की शिक्षा, प्रभुपाद जी कहते थे इतना सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे पढ़ने पढ़ाने के काम हैं, लेकिन कहीं आत्मा की शिक्षा नहीं दी जाती है। जब आत्मा की शिक्षा नहीं है तो आत्मा की संतुष्टि कैसे हो? पहले जो शिक्षा पद्धति थी वो सिर्फ गुरुकुल थी, और गुरु के पास शिष्य जाता था तो पहले आत्मा की ही शिक्षा दी जाती थी, फिर शरीर को चलाने के लिए कुछ कार्य सीखते थे ताकि शरीर चल जाए। मुख्य शिक्षा आत्मा के, आत्मा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का अध्यात्म, अध्यात्म मतलब आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा क्या करने से खुश होगी, वो आध्यात्मिक सिखाया जाता था। और थोड़ी सी शिक्षा शरीर के पालन पोषण की दी जाती थी, जैसे जब तक शरीर है स्वस्थ रहे और सेवा में लगा रहे। तो मुख्य शिक्षा होती थी आत्मा की, आध्यात्मिक शिक्षा मुख्य होती थी, शारीरिक। अब तो सारे की सारी शिक्षा शारीरिक है और आत्मा का नाम निशान भी किसी को मालूम नहीं है। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहले जमाने में स्कूलों के बाहर एक चीज लिखी होती थी, आइए ज्ञान प्राप्त कीजिए, बाहर से दरवाजे पे भी लिखा होता था, आइए ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो ज्ञान की परिभाषा असल में होती थी आत्मज्ञान, और वापसी अंदर से लिखा होता था जाइए सेवा कीजिए। तो असली ज्ञान अगर आपको मिलेगा तो आप सेवा करोगे। ये पुराना स्लोगन था, कभी देखा था स्कूलों के बाहर लिखा हुआ, स्कूलों के ये ऊपर बाहर लिखा हुआ था, आइए ज्ञान प्राप्त कीजिए जाइए सेवा कीजिए। तो सेवा कीजिए, सेवा कौन करेगा? जिसको आत्म का ज्ञान होगा वही सेवा करेगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव सेवा है और भगवान की सेवा है, और भगवान के नाते फिर मानव जाति की सेवा है आध्यात्मिक। अब स्कूलों में ये स्लोगन कहीं लिखा हुआ दिखता है, आइए ज्ञान प्राप्त कीजिए जाइए सेवा, ये लिखा है? आइए जेब खाली कीजिए जाइए लोगों को लूटिए। ये आजकल की एजुकेशन का अनरिटन स्लोगन है, पहले तो सब कुछ दीजिए और फिर जो चाहे वो जाके लूटिए। अब एजुकेशन, अब ये शिक्षा की पद्धति का उद्देश्य हो गया है। अब जो बच्चा 25 लाख देकर डॉक्टर बनेगा वो आपकी सेवा काय के लिए करेगा? वो तो अपना पैसा पूरा पहले निकालेगा ना, ये तो सीधी सी बात है भाई। तो इसलिए ये तो पद्धति ही गलत हो गई। तो ये शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, आध्यात्मिक शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। अभाव है इसलिए दुनिया में धन भी पहले से ज्यादा है, सुविधाएं भी पहले से ज्यादा है। कभी पहले मोबाइल थोड़ी था हर एक की जेब में, एक मिनट पे किसी से बात करता ऐसे थोड़ी कोई था, फिर भी लोग सुखी थे। सुविधाएं अब ज्यादा है लेकिन शांति अब नहीं है, सुख और शांति नहीं है, सुविधाएं ज्यादा है। इसका मतलब सुविधाएं आदमी को सुख शांति नहीं दे सकती, सुख शांति सुविधा देती तो हमारे पास तो बहुत है, ये तो परेशानी लगती है। शांति सुख तृप्ति संतुष्टि ये सिर्फ आत्मा के स्तर का है। आत्मा जब अपना उसका स्वभाव है वो सेवा करेगी तब सुखी होगी। तो इसलिए आध्यात्मिकता मतलब आत्मा के स्वभाव के कार्य, वो जब करेंगे तब संतुष्ट होंगे। तो आत्मा के स्वभाव के कार्य क्या है? बोला ये चार कार्य आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव के कार्य आध्यात्मिकता इसको कहते हैं कि भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की पूजा करो। ये सबके लिए है, स्त्री मानव जाति पुरुष सबके लिए है। तो इसको आत्मा का स्वभाव कहते हैं। ये चार काम मुख्य बताए गए हैं यहां, ये करने से आत्मा की संतुष्टि होगी। और फिर आगे कहते हैं इससे क्या लाभ होगा, कोई पूछेगा तो, हम ये चार काम करें तो हमें लाभ क्या होगा? इस दुनिया में मूर्ख भी बगैर लाभ के काम नहीं करता है। कहते कोई आदमी, बोला एक आदमी सेठ को कहा तुम्हारा बेटा गिर गया, बोला मेरा बेटा कुछ देखा होगा तो होगा, गिरेगा ऐसे नहीं गिरेगा, पागल नहीं है। फिर बेटे तुम गिरे क्यों? बोला चवानी पड़ी थी इसलिए गिरा था। तो आदमी गिरता है तो भी कुछ देख के गिरता है, ऐसे मुफ्त में नहीं गिरता। तो कोई भी पागल मुफ्त में काम नहीं करेगा। तो आखिर शास्त्र भी कहते हैं अगर आप ये चार आत्मा के कार्य करोगे तो एक चीज होगी, और वो चीज क्या है? कर्म ग्रंथि निबंधनम, कर्म ग्रंथि निबंधनम। ये शब्द है कर्म ग्रंथि निबंधनम। अब जो भी आपकी शक्ल है, जो आपको परिवार मिला है, जो आपको काम कर रहे हैं, ये आपके प्रारब्ध कर्म के कारण है। तो ये गांठ एक कर्मों की है जिसके कारण इस दुनिया में सुख दुख भोग रहे हैं। और ये गांठ कहां पड़ी हुई है? ये गांठ पड़ी हुई है आत्मा और शरीर के बीच में। और इस गांठ का नाम है अहंकार, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा भाई, ये जो मैं मेरा बकरी की तरह हमेशा करता रहता है, मैं सारा दिन, ये जो मैं है ये ग्रंथी है। ये चार काम करने से ये गांठ टूट जाती है, कट जाती है, ये ग्रंथी कट जाती है। इसका मतलब प्रारब्ध कट जाता है, भविष्य में दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर गर्भ में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बीमार होके बूढ़ा होके दुख भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों का दुख सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी गांठ खुल जाएगी। कर्म ग्रंथि निबद्धनन्ति, ये चार आत्मा के कार्य करने से कर्म की ग्रंथि मिट जाएगी। एक दिन आपने हमने आपको एक ने बताया था, हमारे समाज के हमारे ऋषियों के शिक्षाओं के अनुसार पुरुषों का वेश धोती होता था और स्त्रियों का साड़ी होता था, तो दोनों में जेब नहीं होते थे, फिर भी बेचारों को जरूरत पड़ती थी ना, तो कपड़े के अंदर ऐसे गांठ बांधते थे, कुछ रुपया रुपया गांठ में बांधते थे, हाँ बुढ़िया जी, इसको बोलते हैं गांठ। वो कपड़े में गांठ को ऐसे जहां भी जाएंगे रास्ते में ऐसे गांठ को देखते रहेंगे कि है कि नहीं है, देखा है कभी है? तो ये गांठ जो होती है ना, ये आपको चिंता में रखती है, गांठ में कुछ भी बना ऐसे करते रहते हैं गांठ, तो वो गांठ ही कट जाएगी तो चिंता मिट गई ना तो गांठ ही नहीं रहेगी। विष्णु चक्रवर्ती ने इसको ऐसे ही लिखा है कि कपड़े में पुराने जमाने के लोग जरूरत का सामान लेके गांठ बंद के जाते थे, तो गांठ की चिंता रहती है, और घर से इतना ही लेते हैं जितना एक दिन की जरूरत है, तो प्रारब्ध के डब्बे में जो माल है उसमें से रोज लेके निकलते हैं, गांठ की चिंता में रहते हैं, तो गांठ ही कट जाएगी, चिंता ही मिट जाएगी। तो कौन चिंता करेगा? भगवान चिंता करेगा। आप चिंतन करो, भगवान चिंता करेगा, और आप चिंता करो तो भगवान बैठ के बांसुरी बजाएगा, उसको क्या करना है आपका आप अगर चिंतन करोगे तो भगवान चिंता आपकी करेगा। तो ये अब इसलिए आप ये चार आध्यात्मिक कार्य करने से हमारे कर्म की ग्रंथि का निबंधन हो जाएगा। इसलिए ये ऋषिगण कहते हैं, फिर कौन ऐसा मूर्ख होगा जो इस कथा सुनने में रुचि नहीं रखेगा। कथा रति, किसको कथा में फिर रति नहीं होगी? इतना बड़ा लाभ हो रहा है कि दुख मिट रहा है, परेशानियां कट रही हैं, तो कथा कौन नहीं सुनेगा? ऐसा मूर्ख कौन होगा? तब ये श्लोक आया है कि आखिर ये कहते हैं कि हम सुने, लेकिन ये सुनना, हमें सुनने के लिए इच्छा कब पैदा होगी, कैसे पैदा होगी, सुनने में हमारे को रुचि कब होगी, टेस्ट कब होगा? तब ये श्लोक आता है। अब इस श्लोक का आप उच्चारण कीजिए, शुश्रुषो शर्धधानस्य वासुदेव कथा रुचि। ये पहली लाइन है, शुश्रुषु सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए? शर्धधानस्य, बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? वासुदेव कथा, भगवान कृष्ण की कथा, वासुदेव की कथा सुननी चाहिए। कैसे उस कथा सुनने में आपको टेस्ट आनी चाहिए, रुचि हो, उसके लिए क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होगी, क्या गुण होगा जब आपको ये मिलेगा? क्या आपको मिलेगा? श्रद्धा मिलेगी, सुनने के लिए श्रद्धा मिलेगी, कथा में आपको रुचि होगी। कब? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब कहते हैं स्यान महत सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निशेवनात्। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हम सबके लिए कि एक काम पहले अगर हो जाए तो सब काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप स्टेशन पे टाइम पे पहुंच के गाड़ी में बैठ जाओ तो फिर गाड़ी अपने आप चलेगी और आपको जहां जाना है वहां पहुंच जाओ, लेकिन स्टेशन पे तो आपको जाना पड़ेगा ना, गाड़ी घर से नहीं उठाने आएगी, ट्रेन नहीं आती है घर पे उठाने, वहां तक जाना पड़ता है। तो यहां एक सबसे मुख्य है साधु की कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर सब काम अपने आप होने लगेगा। और साधु की कृपा के लिए, साधु कृपा कब करता है? जब उसकी सेवा करते हैं। इसका मतलब साधु सेवा करने का किसी को अवसर दे दे तो उसका काम बन गया। साधु महत, महत मतलब महात्मा, महान। महात्मा कौन है? जिसने महान आत्मा भगवान का शरण ले लिया वो महात्मा। और दुरात्मा कौन है? ना? एक महात्मा होता है एक दुरात्मा होता है। भगवान का शरण ले वो महात्मा और संसार का शरण ले वो दुष्कृति, नान वो दुष्ट कृति वाला हो गया। तो महात्मा, पहले तो महात्मा की प्रति आपके हृदय में थोड़ी सी श्रद्धा हो कि हम इसकी सेवा करें और वो सेवा को वो स्वीकार कर ले तो आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी और आपको कथा में रुचि हो जाएगी। तो एक ही साधन है भगवान की कथा सुनने में रुचि होने का, साधु कृपा, महत कृपा, और महत कृपा महत सेवा से मिलती। महत कृपा कैसे मिलती है? महत सेवा से मिलती है। और महत सेवा किया, महत कृपा मिली तो हृदय में श्रद्धा का उत्पन्न होगा। ये हो गया आदो श्रद्धा। तो सताम कृपा, सताम मतलब भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों की कृपा होगी तब मिलेगा महत सेवया, तब संतों की सेवा का हमको अवसर मिलेगा। और जब संतों की सेवा किया तो तीसरा हमारे पास आएगा श्रद्धा। तो ये तीन स्तर हो गए इस श्लोक में, तीन तो ये स्तर है। पहला सताम कृपा। ये मंदिर खोलने का एक ही उद्देश्य है कि यहां साधु रहते हैं और आने वाले जो भी दर्शनार्थी है, यात्री है, उसके ऊपर कृपा करें। क्या कृपा करें? उनको सेवा में लगाए। नहीं तो क्या मंदिर का काम क्या है? कोई काम नहीं, भगवान सब जगह है, लेकिन सब जगह सेवा कराने वाला नहीं मिलेगा। अस्पताल खोल दो, सब ऑपरेशन थिएटर खोल दो, सब मशीनें मंगा लो, लेकिन डॉक्टर नहीं हो तो कोई मरीज जाएगा उधर? हाँ, डॉक्टर नहीं हो तो कोई लाभ होगा? तो डॉक्टर नहीं होगा, सब सामान होने से कोई लाभ नहीं है, और भक्त नहीं है, साधु नहीं है, तो मंदिर में जाके घूम के आने से भी कोई लाभ नहीं होगा, वो सेवा में कौन लगाएगा? भगवान की सेवा में कौन लगाएगा? भाई डॉक्टर, प्रभुपाद जी एक बार कहीं लोगों ने कहा, महाराज इतने लोग दुखी हैं, आप कोई अस्पताल खोलो, आप बड़े बड़े मंदिर खोल रहे हो। प्रभुपाद ने, कौन कहता है ये मंदिर है, ये हमारा बहुत बड़ा अस्पताल है। अस्पताल है बोला हाँ, ये बहुत सारे भौतिक रोगी लोग हैं, इनकी चिकित्सा करने के लिए ये हमारे भक्त लोग बड़े बड़े सर्जन हैं, लोगों का हृदय बदल देते हैं, भौतिकता से निकाल के भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो बड़ा बड़ा हमारा ये चिकित्सालय है, भौतिक रोग का यहाँ अच्छी तरह से चिकित्सा होती है, वो तो ये तो सर्जरी होती है यहाँ अच्छी तरह से, लोगों के अंदर से जो बीमारी है वो निकाल दी जाती है, दिल ही बदल दिया जाता है यहाँ, ये तो बहुत बड़ा, ये तो ऑपरेशन करते हैं जैसे। हाँ हाँ ये सब ऑपरेशन किया हुआ यहाँ बैठे हैं ना ये। इंसानों की ग्रंथियां काट दी गई हैं, जो करती ग्रंथियां थी खत्म हो गई, अब बैठे यहाँ गांठी काट दी, अब क्या कर, चिंता ही नहीं है बैठे यहाँ। अब धोती में गांठ लगाते हैं और तो कुछ भी नहीं। धोती बगैर गांठ के पहनते हो, गांठ से पहनते हो? हाँ, गांठ वाली धोती के लिए शब्द बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए दूसरे तरीके से धोती बांधनी चाहिए, गांठ नहीं लगानी चाहिए धोती में, फिर भी गांठ रह जाएगी तो मुसीबत है, कि गांठ होनी नहीं चाहिए। दोबारा एक बार प्रभुपाद जी, किसी ने पूछा कि आप स्कूल कोई पढ़ाने का व्यवस्था करो, मंदिरों के लिए क्यों पैसे सब मांग रहे हैं? बोले कौन कहता है मंदिर बनाना है, हमारा ये विश्वविद्यालय, इसमें आत्मा की शिक्षा देने का बहुत बड़ा व्यवस्था की गई, हमारे सब ये हमारे सब भक्त प्रोफेसर हैं, ये आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, तो ये ऐसी क्लास है, इसका नाम प्रभुपाद ने क्लास रखा है, मॉर्निंग भागवत क्लास, इवनिंग भगवत गीता क्लास। क्लास किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। कॉपी लाओ, पेन लाओ, बैठो पढ़ो, ये हमारा ये शिक्षा केंद्र है। और प्रभुपाद ने एक बात, प्रभुपाद जी एक बार कह रहे थे वृंदावन में, कि जब कोई यात्री मंदिर में आए तो हमारे मंदिर के ठाकुर जी दिखा के पैसा लेने के लिए नहीं है, जैसे कई मंदिर में जाओगे पर्दा बाद में खोलेंगे, पहले पैसा रखो फिर दर्शन करो, या ये करो फिर वो करो, हमारे ठाकुर दिखा के पैसा लेने के लिए मंदिर नहीं है, हम उनको बताते हैं ये कौन है, ये श्री कृष्ण कौन है, इसके साथ आपका संबंध क्या है, आप इसको भूलकर दुनिया में दुखी हो रहे हो, ये इसके साथ अपना संबंध जोड़ लो, तो ये शिक्षा देना हमारे मंदिरों का उद्देश्य है। और जब कोई यात्री आए, प्रभुपाद जी ने उधर कहा उस प्रवचन में, उस यात्री के हृदय में देखो, उसके हृदय में देखो, उसके हृदय में बिचारे कोई कष्ट है तब आया है, कोई तकलीफ है तब मंदिर में भगवान के पास आता वो है जो बेचारा आर्त होता है, जिज्ञासु होता है, या अर्थ या अर्थार्थी होता है, तो उसके हृदय को देखो, उसके हृदय से उससे स्नेह करो, उससे प्रेम करो, उसको बोलो बैठो, उसको चरणामत दो, उसको प्रसाद दो, और अच्छी तरह से बैठ के हलवा पूरी का प्रसाद खीर खिलाओ, उसके हृदय को निर्मल बना दो। और एक लाइन फिर मैं कहा, उनके हृदय को देखो, उनको भगवान की सेवा में लगाओ, उनके जेब को मत देखना, ये कहा, क्योंकि लोगों ने जेब कहाँ बनाया है, जहाँ दिल है वह, सबका जेब यहाँ होता है, देखो दिल के ऊपर, अब हम दिल को देखते हैं, लोग कहते हैं जेब को देख रहे हैं, ये दिल बना, दिल के ऊपर लोग जेब बनाते हैं, क्योंकि माल दिल के पास रखते हैं। प्रभुपाद का सीधा कहना था, जेब में मत देखो, लक्ष्मी जब उनको प्रेम से शिक्षा दोगे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा, लक्ष्मी भगवान के चरण सेवा करने के लिए अपने आप आ जाती है, उसको मांगने की जरूरत नहीं, बाह्य प्रोडक्ट है प्रचार का, लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए प्रचार नहीं करना। और तब प्रभुपाद ने कहा, मैं यहां से दस रुपया भी मेरे पास नहीं था, और आज 10 साल के बाद 10 अरबों से ज़्यादा विश्व भर में संस्था की प्रॉपर्टी है। ऐसा कोई दुनिया में व्यवसाय हुआ है इतने समय में इतना सारा कार्य किया हो? नहीं। तो ये सिर्फ मैंने लोगों के हृदय के देखा और उनको भगवान की सेवा में लगाया और भगवान ने ये सारी व्यवस्था की है, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। ये प्रभुपाद का वृंदावन का एक लेक्चर है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ एक ही है, कैसे भी दुखी लोग सुखी हो जाएं। जो संस्कार लोगों ने भुला दिए हैं, जो इस भारत को महान कहते थे लोग, मेरा भारत महान कहते थे, क्योंकि प्रभुपाद कहते 50 साल पहले यहाँ हर गांव में सुबह शाम कथा होती थी, हर एक व्यक्ति घर से निकलता था, मंदिर का दर्शन करता था, अपने काम को जाता था, शाम को आके कहीं ना कहीं भागवत कथा रामायण कथा हर गांव में होती थी, इसलिए भारत महान था। तो ये जो संस्कार हमारे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से नाश हो गए हैं, उन संस्कारों को पुनः स्थापित करना इस संस्था का मूल उद्देश्य है। ये संस्कार आस्ते आस्ते समाप्त होते जा रहे हैं। संस्कार का मतलब पवित्रता। तो पवित्रता चली गई है तो क्या आ गया है? पवित्रता जाती है तो क्या आ जाता है? सब प्रदूषण आ गया है। मानसिकता भी बहुत दूषित हो गई है, तो कॉन्शियसनेस को भी क्लीन करनी है, और इस क्लीन का साधन चेतन महाप्रभु ने क्या बताया है? चेतो दर्पण मार्जनम। चित्रूपी दर्पण जो कुलुषित हो गया है, जो काला हो गया है, जो प्रदूषित हो गया है, उसका मार्जन करो, उसके ऊपर झाड़ू लगाओ, उसको पोछा लगा के साफ करो। बोला किससे करें? हम तो नहीं कर सकते हैं। तो बोला भगवान का नाम लो, भगवान की कथा सुनो, भगवान ही आपके हृदय को साफ कर देंगे। आपसे नहीं होता है तो जो कर सकता है उसके पास जाओ। तो इसलिए ये कार्य, अब यहां हम आगे क्या कह रहे थे, इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए शुश्रूषधाना वासुदेव कथा रुचि। अब है तो अब प्रश्न हो गया कि हमारे ऊपर संतों ने महत्व, पहले क्या था? पहले क्या चाहिए? सताम कृपा, भक्तों की कृपा। और सबसे बड़ी माँ प्रभुपाद जी की कृपा है कि सब जगह जगह उसने मंदिर बना दिए। इससे बड़ा और सताम कृपा कोई हो नहीं सकती है कि आपको एक जगह, हम 500 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, इतना बड़ा जगह जहाँ 500 लोग आए, 1000 लोग आए बैठ सकते हैं और सबके लिए प्रसाद व्यवस्था कर रहे हैं, इतना कोई बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता है। 5 दिन से आप रोज देख रहे थे, शाम को 800-1000 लोग आते थे और सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था थी, इतना तो शादी में लोग करते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं, नहीं कर सकते। और यहाँ हम तो कहते हैं 12 महीना चलता रहेगा, आप आते रहो और भगवान का ये भंडारा चलता रहेगा, आप कथा सुनने आ जाओ। तो ये काम सामान्य नहीं है, ये काम आप समझ लो कि कोई सोचे के घर में ये काम कर नहीं सकता है, भगवान ने भले धन दिया है फिर भी नहीं कर सकता, सेवा नहीं होगी। तो ये महत्व कृपा सबसे बड़ी है कि ये चीजें बनी हुई, हर एक व्यवस्था कितनी अच्छी बनी, कितना इधर देखो तो सामने भगवान का सुंदर दर्शन हो रहा है, आंखों से सुंदर दर्शन हो रहा है, कानों से सुनने के लिए भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, और मुख में डालने के लिए भगवान का प्रसाद मिल रहा है, और क्या चाहिए? सभी चीजें हो ही तो रही हैं अपने आप सारी। तो ये महत कृपा है। अब महत कृपा तो हो गई, अब आपको महत सेवा करनी है। सताम कृपा तो हो गई, अब महत सेवा तो हमको करनी पड़ेगी ना। उन्होंने ये अवसर तो दे दिया हमको, ये मौका दे दिया, सब कुछ बना के दिया, अब हम जब सेवा करना शुरू करेंगे, ये जो हरे कृष्ण मंत्र हम सब लोग जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र में क्या कहते हैं? हे राधा रानी, हे श्रीमती राधे, कृपा करके हमें कृष्ण की सेवा का आनंद दीजिए, उस सेवा में ही आनंद है। तो इसका अर्थ है, इस मंत्र जपने वालों को फल मंत्र का तब मिलेगा जब सेवा करेंगे। तो आने वाले सब भक्तों को अंदर मंदिर में आते ही अगर अगर वो चाहते हैं कि हमारी ग्रंथि टूट जाए तो भाव सेवा का वहां से कर लें कि चाहे नीचे अगर कुछ गिरा हुआ कागज देखा तो हम सफा कर देंगे, झाड़ू लेके सफाई कर देंगे, सब उठेंगे तब यहाँ सफाई करेंगे, प्रसाद खाएंगे तो कुछ बर्तन की सफाई करेंगे, सेवा का भाव लेके आओ। ये महत सेवा हो गया, सताम कृता महत सेवा। तो कृपा के लिए ये इतना बड़ा आपके लिए सब व्यवस्था बना के रखी है, अब सेवा आप कीजिए। जब आप सेवा करेंगे तब आपके हृदय में श्रद्धा, श्रद्धा का बीज जो है वो अंकुरित होने लगेगा, और जब श्रद्धा हो जाएगी तब फिर आपको सुनने में रुचि होगी। तो अब आपके आपको क्या करना चाहिए, सेवा, शरीर से सेवा करो, मन से सेवा करो, समय देकर सेवा करो, आर्थिक सेवा करो, कोई ना कोई सेवा करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को भगवान ने शरीर दिया है, वाणी दी है, और किसी न किसी को अर्थ दिया है, किसी को कोई कला दी है, कोई दुनिया में खाली नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ है। जो भी आपके पास है वो थोड़ा सा भगवान की सेवा में लगा के देख लो, साधुओं के निर्देश में सेवा में लगा लो, और फिर आपके हृदय में इस कथा में रुचि होगी। तो महत सेवा आपको करनी है तब रुचि उत्पन्न होगी। तब किस में रुचि उत्पन्न होगी, श्रवण में, सुनने में। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या सुनना चाहिए, ये प्रश्न उठता है क्या सुनना चाहिए और सुनने से लाभ क्या होगा। श्रुण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतः स्थानीय भद्राणी धनोति सुहृद सताम। आपने सेवा कर ली, कृपा प्राप्त की संतों की, भक्तों के आदेश में भगवान की सेवा में लगे, भक्तों की सेवा में लगे, आपको श्रद्धा हुई, तब सुनना चाहिए स्वकथा कृष्ण, जो कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कही है, भगवद गीता, अथवा जो कथा कृष्ण महिमा के लिए व्यास देव ने रची है, श्रीमद् भागवत। जब आप ये सुनेंगे श्रद्धा के साथ तब हृदय में विराजमान भगवान आपके अंदर जो भी अभद्र पड़ा है, अभद्र का मतलब, भद्र का मतलब भला, अभद्र का मतलब बुरा, जो भी कर्मों के कारण हृदय के अंदर मन के ऊपर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और भी जो दुनिया की बुराइयां हैं वो अंदर में पड़ी हैं, धुनोती उसको बैठ के धोगा, धो के साफ करेगा। कौन, हमारा शुभ चिंतक भगवान, जो सुहृद सताम, जो भक्त ऐसे श्रद्धा से हरि कथा सुनते हैं, भगवान उनके हृदय में से अशुभ को अभद्र को धो के निकाल देते हैं। ये इस एक स्तर, अगले श्लोक में एक शब्द को हमने स्पष्ट नहीं किया, वो शब्द था तीरथ निश्वयमनात्। ये क्योंकि ये स्तर के लिए आप में से बहुत से लोग तो इस काम को कर ही रहे हैं, भक्तों की कृपा, महात्माओं की सेवा, श्रद्धा, तो आदौ श्रद्धात साधु संग, फिर तीसरा शब्द है भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब भगवान का नाम जपना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे, तीर्थ, तीर्थ का मतलब, तीर्थ का मतलब होता है जो पवित्र करे। निषेवणात, तीर्थ निषेवणात, तीर्थ का एक और अर्थ है गुरुजन। गुरुजनों के चरणों में समर्पण करके भगवान के नाम जपने को शुरू करेंगे, तब क्या होगा? तब भगवान की कथा में रुचि के कारण अनर्थ की निवृत्ति शुरू हो जाएगी। ये अनर्थ निवृत्ति अभद्र का नाश होना है, अनर्थ निवृत्ति। तो ये जो पढ़े हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उसके अंतर्गत ये अनर्थ निवृत्ति, और ये चलेगी भाव तक। ये अनर्थ निवृत्ति जब तक भाव तक नहीं पहुंचते तब तक थोड़े थोड़े अनर्थ रहते ही हैं, एकदम नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? बोले बहुत जन्मों के हैं। एक ब्राह्मण था, किसी कारण से विवाह उसने एक मोहम्मदन लड़की से कर लिया। सो छः एक महीना घर नहीं आया और पत्नी को कहा, देखो अब हम अपने घर जा रहे हैं, सावधान होके बोलना, कहीं कोई समझे नहीं कि तुम दूसरे कुल की और दूसरे मजहब की हो, नहीं तो हमारा भांडा फूट गया तो बहुत खराबी होगी। तो उसको ले गया, वो तो ठीक है, सेवा कर रही थी, सामान लेके आ रही थी तो अचानक सामान कुछ गिर गया और बोला बिस्मिल्लाह, तो भांडा खुल गया। उसने बोला तुमको कहा था ऐसे मत कहना? बोला 50 सालों का पड़ा हुआ है, निकलने में टाइम लगेगा, 6 महीने में थोड़ी जाएगा। ये तो ऐसे कितने सालों का पड़ा हुआ है, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। तो ये तो कई जन्मों का कचरा कठा है, इसको निकालने में समय लगता है। भगवान निकालने की प्रयास करता है तब भी नहीं निकलता है, वो झाड़ू निकालता है फिर उड़ा हम पकड़ के लाके वापस उधर कथा करते हैं। यहाँ अच्छी तरह से आपको ये तो ऐसे जैसे अस्पताल से डॉक्टर ठीक करके भेजते हैं, हम घर जाके फिर डॉक्टर ने कहा शुगर तुम्हारी कंट्रोल हो गई, तुम्हारे को इंसुलिन पे रखा था, अब घर जाओ, हमने गुलाब जामुन खाना शुरू किया, तो वो फिर वापस बीमार हो गए, अस्पताल में आते। तो यहाँ से तैयार करके भेजते हैं कि अब जाके भगवान का भजन करना, लेकिन बाहर जाते जाते फिर किसी ने हमको कहा कि यहाँ मंदिर में जब कथा सुनते हैं ना तब मन करता है कि अब भगवान की सेवा भजन करना चाहिए बहुत है। जैसे बाहर निकलते हैं वो सब उड़ जाता है, जैसे पहले थे वैसे का वैसे हो जाते हैं। तो हमने उसको कहा भाई तुम एक आधा मिलीलीटर ऐसे सेंट लगाने के बाद और किसी खड्डे गंदे पानी में चले जाओ, जब बाहर निकलोगे तो सेंट की खुशबू आएगी कि गंदे पानी की आएगी? सेंट तो लगाया इतना और खड्डे पूरे के अंदर गिरे। तो यहाँ हफ्ते में एक दिन संडे को घंटा डेढ़ आते हो, बाकी 7 दिन के 24 से घंटे करके उसमें से 1.5 घंटा निकालो, बाकी सारे तो पड़े रहते हैं उसी के अंदर। तो उसका प्रभाव ज्यादा कि इसका प्रभाव ज्यादा? लेकिन फिर भी दुख करने की जरूरत नहीं। एक संत के पास कोई आया कि आपका ज्ञान देते हैं, आप सेवा में लगाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाहर जाते हैं सब खत्म हो जाता है। तो संत ने उसको एक टोकरी दी, बांस की टोकरियां बनती है ना, टोकरी एक दी, बोला जा नदी से भर के आ। तो नदी में टोकरी डाले तो टोकरी से पानी सब बह जाए, तो 10, 20, 40, 50 बार टोकरी को डाला, टोकरी अंदर पड़ी थी। वापस आया खाली की खाली लेकर, बोला महाराज भरती नहीं है। बोला क्यों? बोला इसमें सुराख पड़े थे, मैं 50 बार डाला नहीं भरी। तो बोला ऐसे ही मैं तुम्हें जब शिक्षा देता हूँ, तेरे अंदर इतने इतने बड़े बड़े होल पड़े हैं, सारा बह जाता है, अब भरे कहाँ से? तो बेचारा दुखी हुआ। संत ने कहा दुखी मत हो बेटा, तू टोकरी को देख ले, जब तू टोकरी ले गया था तब इसके ऊपर मिट्टी थी? बोला हाँ। अब देखो धुल के आई है? बोला हाँ बाबा धुल तो गई है। बोला जब तुम ले गए थे तब सख्त थी? बोला हाँ। बोला अब 50 बार पानी में डाली है, अब कुछ नरम हुई है? बोला अब थोड़ी नरम हुई है, पहले बड़े बड़े होल थे अब थोड़े छोटे हुए हैं। बोला हाँ हुए हैं। तो बोला भरी नहीं तो कोई बात नहीं, धुल के तो आई, नरम तो हो गई है ना, तो करते रहो, एक दिन ये सुराख छोटे हो जाएंगे तब भर जाएगी। तो ये है कि भरी नहीं तो कोई बात नहीं, धुली तो सही कम से कम, तो धुलाई होती है यहाँ, अभी भरने में टाइम लगेगा। तो ये टाइम लंबा लेता है अनर्थ निवृत्ति का। तो भगवान अपने भक्तों के हृदय से अभद्र को नाश करते हैं उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन से वो श्रद्धा से भगवान की कथा कीर्तन और सेवा करता है, उस प्रोपोर्शन से सफाई शुरू करते हैं। तो अब ये हो गया अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है? निष्ठा। अब निष्ठा कैसे आएगी? तो ये श्लोक है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। अब भगवान ने आपकी सहायता किया, कुछ दिल साफ हुआ, तो अब आपका और भागवत को नित्य सेवा करने के लिए इच्छा पैदा हो गई, रोज भागवत सुनेंगे। और भागवत का यहाँ अर्थ लिखा है दो भागवत, एक ग्रंथ भागवत और एक पुरुष भागवत। तो ग्रंथ भागवत जो ये श्रीमद् भागवत है, और पुरुष भागवत जैसे प्रभुपाद और उनके अनुयायी जो प्रभुपाद की शिक्षाओं को वैसे का वैसे शुद्धता से जन कल्याण के लिए लोगों को दे रहे हैं वो भागवत पुरुष। ऐसे दोनों का सेवन करने से नित्य प्रतिदिन भक्तों का संग करना, भक्तों के संग में भागवत का श्रवण करना, तो फिर जो बाकी कुछ कचरा है वो ये भागवत, वो भी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जो प्रायः जितना भी कचरा है वो निकल जाएगा, 10% फिर भी रहेगा, 90% तक निकल जाएगा। और जब कुछ हल्कापन अंदर होगा तो भगवान उत्तम श्लोक गोविंद के प्रति हमारा मन निष्ठा आ जाएगी कि अब यही भक्ति करनी है, अब इधर उधर भटकना नहीं है, बस यही हमारा जीवन, यही जाना है, ये निष्ठा पक्की हो जाएगी। निष्ठा किसी चीज में आना बहुत बड़ी चीज होती है। निष्ठा का मतलब अब हमारे को पता है कि हमारा काम यहीं से होना है और हम कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए रोज यहाँ आते रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। निष्ठा, सबरी के जीवन में निष्ठा को देखने को मिलता है। गुरु मतंग कह के गया था एक दिन राम जी आपके घर में आएंगे, गुरु के वचनों के ऊपर इतनी निष्ठा थी, रोज झाड़ू निकालती थी, रोज फल ला के रखती थी, रोज पानी भर के रखती थी, और कई साल ऐसे करती रही, लेकिन निष्ठा इतनी थी गुरु जी के वचनों के ऊपर, वो प्रतिदिन ऐसे करती थी, प्रतिदिन प्रतीक्षा करती थी, और एक दिन झाड़ू निकाल के फल ला के रखा है, पानी भर के, तब तो राम लक्ष्मण आ ही गए। तो ऐसी निष्ठा जीवन में शास्त्र के और गुरु के वचन के ऊपर हो कि हरे कृष्ण मंत्र जपने से, प्रभुपाद जैसे कहा, चार नियम पालन करो, 16 माला जपो, इस जन्म में आप भगवत धाम जाओगे, इसके ऊपर निष्ठा हो जाए, तो हम इसी को जपते ही रहें, तो निश्चित रूप से एक दिन भगवान के धाम चले ही जाएंगे। तो निष्ठा सबरी की इतनी पक्की थी अपने गुरु के वचनों के ऊपर, और प्रतिदिन ऐसे करती थी, और एक दिन तो राम जी आ ही गए, और आ भी क्या गए, उसको उसके हाथ से फल भी खा लिया, पुष्प फल अर्पण करने वाले के उदाहरण में तो शबरी का नाम आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल तो उन्होंने प्रेम से जो है भगवान को अर्पण किया, दूसरा फल तो उस मथुरा की फल बेचने वाली ने कृष्ण को बचपन में फल दिया था, वो तो अन्न के बदले में फल दिया था, इसने कुछ भी नहीं लिया, ऐसे ही फल दे दिया। तो ऐसे निष्ठा हमारे जीवन में आनी चाहिए, ऐसे नहीं एक भक्त था, कौन सी कथा, मतलब 2-3 कथाएं ऊपर से घूम रही हैं, पहले हंसने की बता देता हूं फिर सीरियस। एक आदमी को हमने देखा कहीं प्रणाम कर रहा था, मैं पूछा भाई कौन सा मंदिर है यहाँ प्रणाम कर रहे हो? कृष्ण भगवान का मंदिर है, बोलना भाई तो शंकर जी का है, बोलना तो गणपति है, नहीं देवी का है, देवता किसका, किसको प्रणाम कर रहे हो? मैं बोला ससुराल का घर है, बोला मेरे को टीवी बीवी सब यहाँ से मिला है। ये भी निष्ठा है उसकी बिचारे की। पंद्रह दिन एक देव की पूजा की, काम हो काम नहीं हुआ, एक ही मंदिर में। अब तो मंदिर मल्टीविटामिन बहुत बने, एक मंदिर में सारे देवी देवता होते हैं, उसको हम डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं मल्टीविटामिन मंदिर। क्योंकि डॉक्टर देखता है पता नहीं कौन सा विटामिन कम है, सब दे दो कोई ना कोई तो ठीक होगा। तो मल्टीविटामिन मंदिर सब देवता होते थे। एक आदमी एक महीना अगरबत्ती ऐसे गणेश जी को किया, मेरा काम गणपति बाबा काम नहीं हुआ। दूसरे दिन को तुम्हारा बंद, देवी को करूंगा पूजा। एक हफ्ता 15 दिन देव काम नहीं हुआ, शंकर जी की पूजा शुरू की। तो अगरबत्ती शंकर जी को चढ़ा रहा था तो धुआं देवी की तरफ जा रहा था, तो रुई लेके उसके नाक में डाली। बोला काम तो करती नहीं अगरबत्ती, सूंघती है। उसने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया उसका। बोला ये क्या कर रही है? बोला तुम्हें इतना विश्वास है कि मैं धुआं सूंघ सकती हूं, तब तो नाक में डाल रहा है ना। इतना विश्वास होता तो तेरा काम भी हो गया होता। तो निष्ठा तो किसी के ऊपर नहीं है कम है। वो उसने कहा है शनि का व्रत रख रहा हूँ, फिर अगली बार मंगल का शुरू करूँगा, फिर बुध का करूँगा। ये कभी इधर लोटी की तरह घूमता रहेगा तो कुछ निष्ठा नहीं। एक निष्ठा है ऐसी, एक दृढ़ निष्ठा हो जाए ना जीवन में, वो कब होती है? नित्य भागवत सेवया, नहीं तो नहीं होगी। भागवत का नित्य श्रवण करने से, भागवत पुरुषों के संग में और नित्य, यह नित्य भागवत का रोज पाठ होता है। भाग्यशाली कोई हिम्मत करे तो रोज आ सकता है, और रोज आने वालों का स्वागत है, आप आइए। हम तो कहते हैं रोज रविवार हो, आप ऐसे ही आया करो। रोज रविवार होना चाहिए ताकि सब आ जाओ ना प्रेम से। नहीं, प्रभुपाद को एक दिन ऐसे कहना पड़ गया, रविवार को बहुत से लोग देखे, बोला आप सब लोग यहीं रह जाओ मंदिर में, आपके भोजन का रहने का व्यवस्था हम करते हैं, आप यहीं रह जाओ। इतना बड़ा ऑफर दिया लेकिन एक भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहे? सबकी गांठें बांधी हुई थी। और सबसे बड़ी गांठ कौन सी है? जो पंडित जी बांधता है शादी के समय लड़के और लड़की की। सबसे बड़ी गांठ न खोलने वाली ये है, उसका नाम भी गांठ है। गांठ है कि नहीं है? वो जो पल्लू वाली गांठ है वो खुलने वाली नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। किसी ने पूछा दो भागवत है, एक पुरुष भागवत एक श्रीमद् भागवत, तो दोनों बराबर का फल देते हैं, फिर भी दोनों में से कोई थोड़ा बहुत अंतर है क्या? दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर भी एक भक्त ऐसे मौज में बोलता है एक अंतर है। भाई तुम बोलो क्या अंतर है? बोला पुरुष भागवत प्रसाद देता है। पुरुष भागवत कथा के बाद प्रसाद देता है। ये पुरुष भागवत इसलिए महान है कि भागवत भी बताता है प्रसाद भी देता है। इसलिए पुरुष भागवत की कृपा से ग्रंथ भागवत हमारे जीवन में फल देगा। तो पुरुष भागवत महत्वपूर्ण जीवन में है। भागवत गीते भागवत स्थाने, भागवत सुननी चाहिए भागवत पुरुषों के संग में, नहीं तो भागवत भी भगवान के प्रीति का जो फल है वो न देकर संसार के भोग का फल दे देगा। अगर किसी शुद्ध भक्त भागवत से नहीं सुनेंगे तो भागवत का फल संसार का भोग होगा, भगवान की प्रीति नहीं होगी। भागवत एक ही है। मंथन तो दोनों ने किया था, देवताओं और असुरों ने, मेहनत भी दोनों ने बराबर की थी, जगह भी एक थी, काम भी एक था, फल में अंतर था। देवताओं को तो अमृत मिला लेकिन असुरों का सिर्फ मुंह काला हुआ वासुकी के धुएं से, जहर से। तो ऐसे भागवत वही है, भागवत पुरुष बताएगा तो ग्रंथि टूट जाएगी, भगवान का प्रेम हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा। वही भागवत है। अगर किसी भोगी से सुन लिया, किसी कामी से सुन लिया, किसी लोभी से सुन लिया, तो जो उसके हृदय में होगा वो आपके हृदय में आएगा। फल भागवत का लोभ मिलेगा, भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, रिजल्ट वही ही। देखो ये ऐसे तो किताब है, काले शब्द है, सफेद कागज है, लेकिन ये पुरुष भगवान ये साक्षात समझ कर और इसकी सेवा में लगोगे तो इन अक्षरों के अंदर प्रभुपाद जी के शब्दों में एक एक पन्ने में भगवान श्री कृष्ण आपको दिखेगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो शब्द ही दिखेंगे। तो ये तो आपको इस पन्ने के अंदर भगवान दिखाने के लिए भगवान के भक्तों की जरूरत है। एक बार सारे लिखे हुए ग्रंथ गोस्वामियों के, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जो भी उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, ये सारे ग्रंथ उठा के तीन प्रभु, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य बैलगाड़ियों में लेके जा रहे थे, और बीरमपुर में वहाँ के राजा ने अपने ज्योतिषी से पूछा कि किस दिशा में हमारे आदमी भेजे, धन कहाँ से आ रहा है। बोला बड़ा धन एक बैलगाड़ी में आ रहा है। तो ये तो रात को इनके सारे पुस्तक लूट के चले गए, बड़े दुखी हुए, इतने सारी परंपरा के पुस्तक सारे चोरी हो गए। नरोत्तम अपनी तरफ चला गया, श्यामानंद चला गया ओडिशा, नरोत्तम चला गया बंगाल, श्रीनिवास वहीं रहा। बोला मैं इन ग्रंथों की यहाँ खोज करूँगा। किसी ब्राह्मण के घर में इधर उधर रहा। एक दिन ब्राह्मण उसको राजा के महल में ले गया, और राजा भागवत रोज सुनता था लेकिन फिर भी डाका डालता था। देख लो, मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, भागवत की रोज कथा उसके घर में होती थी। भागवत की कथा सुनने के बाद ज्योतिषी से पूछता था अब डाका कहाँ डालें। वही तो भागवत तो सुन ही रहा था। तो श्रीनिवास आचार्य वहाँ जाके बैठे और भागवत शुरू हुई, भागवत की कथाकार को सुनते। श्रीनिवास ने कहा ये तो भागवत ठीक नहीं बोल रहा है। वो तो पंडित को क्रोध आ गया, नहीं ठीक बोला तो तुम बोलो। श्रीनिवास आचार्य भागवत को बोलना शुरू किया, सुनने वाले के आंखों में आंसू आ रहे थे, राजा चरणों में गिर के श्रीनिवास को अपना गुरु बना दिया कि भागवत का, वो तो भागवत को भागवत पुरुष से सुनने से उसका हृदय बदल गया। उसको तो भागवत के अंदर से भगवान श्री कृष्ण की छवि बाहर निकल के उसके हृदय में आई। परमात्मा ने कहा ये जो कह रहा है ये सत्य है, और चरणों में गिर गया। गुरुजी किया, बोला गुरुजी अब देखिए आपको मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं, वैसे तो किताब हमारे काम के नहीं है, एक बार हम लूट के आए थे, अंदर देखो बड़ी पेटी में आपके काम का हो, तो वो जाके खोले तो बोला इसी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ बैठा था। तो भागवत सुनाने वाला अगर सही नहीं है तो आदमी चोरी भी करता रहेगा, बेईमानी भी करता रहेगा। इतने सारी भागवत कथाएं हो रही हैं और इतना सारा वो काला धंधा कर रहे हैं, कराने वाले ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। जो कथाएं कराते हैं उनका ही धंधा है दो नंबर का, क्योंकि सुनाने वाला पैसा लेके सुनाएगा तो सुनने वाला भी तो पैसा ही लेता रहेगा ना। ये सुनाने वाला कृष्ण प्रेम के भाव से सुनाएगा तो कृष्ण प्रेम जो चीज जिसके पास वो। फिर बात आ रही है, एक पत्नी रोज पति से पैसा मांगे। एक दिन पति नाराज होके बोला रोज रोज पैसा मांगती है, कभी बुद्धि भी मांग ले। पत्नी ने कहा आपके पास अगर होती तो पहले नहीं मांग लेती। ये पहले हुई तो होती तो मांग ही ली होती, नहीं है तब तो पैसे मांग रही हो। तो जिसके पास स्वयं के पास भक्ति नहीं है वो भक्ति कहां से देगा, जिसके पास स्वयं के पास प्रेम नहीं है वो प्रेम कहां से देगा। तो इसलिए जो भगवान के प्रेम में रहते हुए भागवत पुरुष है उनके संग में भागवत सुनेंगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ऐसे जब हमारी निष्ठा बढ़ जाएगी तब हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया, तदा उस वक्त, तदा रजस्तमो भावा काम लोभ आद्य चये चेते एते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। इस भागवत सुनने से रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। रजोगुण में लोभ होता है, काम होता है, तमोगुण में आलस, निद्रा, प्रमाद होता है, ये समाप्त हो जाएगा। रजो दुर्ग तमोगुण समाप्त हो जाएगा, सत्वगुण में स्थित हो जाएगा और शुद्ध सत्वगुण के स्थिति में आ जाएगा। उसका जीवन में अब क्या होगा, सत्वे प्रसीदति। अब उसकी स्थिति सत्वगुण में, वैसे एक शब्द होता है ये सत्वगुण भौतिक गुणों से ऊपर ले जाएगा, और वो एक शब्द है सत वसुदेवम, क्या क्या शब्द है, सत्य सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्द्यते, सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्द्यते। जब विशुद्ध सत्य में आदमी स्थित होता है तब भगवान वसुदेव हृदय में प्रकट होता है, भगवान की हृदय में प्रकटि होती है। विश्व तीनों गुणों से ऊपर हो गया तो आ गया विशुद्ध सत्व। जो विशुद्ध सत्व आया तो वसुदेव, वसुदेव का मतलब भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। तो ये अनर्थ निवृत्ति का और ऊपर, ये सब सत्वगुण गया, रजोगुण गया, लोभ गया, काम गया, अब उसको, अब उसका हृदय शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो गया। अब होगा एवं प्रसन्न मनसो, अब उसका मन प्रसन्न हो गया, अब उसको रुचि आने लगी, अब उसको टेस्ट आने लगेगी। जब लोभ नहीं रहा, काम नहीं रहा, तब तो भगवान का प्रेम ही रह गया ना। वैसे काम और प्रेम में दिन रात का अंतर है, वही भगवान का प्रेम है जो संसार में काम के रूप में परिवर्तित हो गया है। भागवत सुनने से वो वापस शुद्धिकरण होके प्रेम में परिवर्तित हो जाए, तो कहे तो वही प्रेम ही है जो काम बन गया है संसार में। तो अब प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग जायते। अब तो भगवान भगवत तत्व का विज्ञान हो जाएगा, अब उसको अनुभव हो जाएगा। वसुदेव हमारे हृदय में विराजमान है, इसका उसको अनुभव हो जाएगा। और अब उस स्थिति में ये इसकी स्थिति कितनी आगे बढ़ गई, अब तो भगवान में उसको आसक्ति होने लगेगी, क्योंकि प्रसन्न हो गया, आनंद हो गया। अब तो प्रेम इतना भगवान के प्रति इतनी आसक्ति हो जाएगी, और उससे उस कथा में उसको अब रति, पहले रुचि थी, अब रति आने लगेगी। और यहां तक पहुंच गया तब उसको दर्शनम, अब दर्शन कैसे होता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। अभी उसको दुनिया का कोई बंधन नहीं है, वो बाकी सब चीजों से मुक्त हो गया और प्रसन्नचित हो गया, एकाग्र मन हो गया, और इसको अब हो गया, अब इसकी विद्यते हृदय ग्रंथि छिंद्यन्ते सर्व संचय क्षयन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अब तो उसके हृदय के अंदर जो भी अहंकार की मोह की ग्रंथियां थी वो सब कट गई। किससे कट गई, भगवत ज्ञान से। ये जो सुनने से क्या मिला, तत्व विज्ञान, ये जो भगवत तत्व विज्ञान मिला, ये जो अनुभव मिला, ये ऐसी तलवार है जिसने सारी गांठें काट दी, हृदय की गांठें काट दी, छिंद्यंती, और को सब संशय समाप्त हो गया। अब ये संशय नहीं रह गया कि भगवान मिलने के लिए कोई और रास्ता, या इधर जाऊंगा या और कोई साधन करूंगा, और जन्म जन्मांतर के कर्मों की श्रृंखला कट गई, और हृदय में आत्मा का भी दर्शन हुआ और परमात्मा की भी दर्शन हुआ। दृष्ट्वा एवात्म ईश्वरे, अपने आत्मा का भी दर्शन हुआ और भगवान का भी दर्शन हुआ। तो ये भक्ति का मार्ग है। शुरुआत होती है संतों की कृपा प्राप्त करने की भावना से, और संतों की कृपा से संत सेवा देते हैं, और सेवा से श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से भागवत सुनने में रुचि होती है, भागवत सुनने में रुचि होती है, भगवान का नाम जपने के लिए गुरुजनों का शरण लेना पड़ता है, तब हृदय के अंदर से अनर्थ की निवृत्ति होती है, तो और भागवत सुनने में मन लगता है, कीर्तन में और श्रवण में मन लगता है, तब भक्ति निष्ठा वाली होती है, तब और कुछ रहे हुए भी अनर्थ समाप्त हो जाते हैं, तब निष्ठा के बाद रुचि आती है, आसक्ति आती है, और फिर भगवान के भाव तक पहुंचते हैं, भगवान का दर्शन हृदय में करते हैं भक्त और आनंद लेते हैं। हरे कृष्ण। तो इन सब श्लोकों से भागवत के हमको क्या सीखना है, अब समाप्ति करते समय हमको क्या सीखना है इससे, हमें पहले भक्तों का संग करना चाहिए, उनकी कृपा से कथा में हमारे को रुचि होनी चाहिए। सताम कृपा महत सेविया श्रद्धया। तो दुर्लभ इस संसार में एक ही चीज है जो नहीं मिलने वाली है। ये चेतना महापुरुष से जब पूछा गया दुनिया में सबसे दुर्लभ क्या है, तब कहा भक्तों का संग। सबसे दुर्लभ इस दुनिया में भक्तों का संग है, और ये मंदिर, ये सारी व्यवस्था भक्तों का संग, और ये पुस्तक प्रभुपाद का संग साक्षात आप निरंतर कर सकते हो अपने घर में किसी वक्त भी। और सबसे महान भक्त अपने वचनों के द्वारा, पुस्तक में अपनी वाणी के द्वारा संग दे सकता है, और मंदिर में उनके भक्त संग दे सकते हैं। ये दोनों ही संग आपके जीवन में आपको आगे भगवान की भक्ति में बढ़ाने का साधन है। तो एक भक्तों का संग कीजिए, एक प्रभुपाद जी के पुस्तकों में प्रभुपाद जी का संग कीजिए, और आगे बढ़ के भगवान की भक्ति कीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा, क्या है भाई? भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद कुल देवता की पूजा जरूरी है क्या? कुल देवता की पूजा करने से कृष्ण की पूजा मिली है? आपने कुल देवता की पूजा की, इसलिए कुल देवता प्रश्न हुआ, उसने आपको कृष्ण की पूजा दे दी। ये ऐसे है, लड़की माँ बाप ने पाली, शादी करके जब पति को दे दी, तो अब पति की सेवा करेगी कि वापस माँ बाप की जगह करेगी? पति की करेगी ना, तब तो कुल देवता ने आपको पाल पोंछ के भगवान श्री कृष्ण के पास भेज दिया। अब कृष्ण की सेवा करो, महीने मास में जब कुल देवता का दिन है तब प्रणाम करके प्रार्थना करना, आपने बड़ी कृपा की, आपकी ये कृपा के कारण आज मैं भगवान की भक्ति में लगा हूँ, आपके आप ये कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। ऐसे ही लड़की करती है, शादी मुरादी माँ बाप के पास जाती है, दो बार हाथ जोड़ के कुछ लेके आ जाती है। तो असल में कुल देवता की कृपा माननी चाहिए, क्योंकि आपने कुल देवता से संसार नहीं मांगा तो उसने आपको भगवान दे दिया, इसलिए भगवान की पूजा करनी चाहिए। समय समय के बाद कुल देवता को आदर देना चाहिए, जब भी उसका कोई दिन होता है तब जाके, विशेष दिन है तो उसको जाके प्रणाम करके और आशीर्वाद मांगनी चाहिए कि ऐसे मेरी भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति दृढ़ होती रहे। ये प्रश्न ऐसा ही है कि क्या उनकी सेवा हम छोड़ दें क्या? तो ये लड़की से पूछे कि तुम माँ बाप की सेवा क्यों छोड़ती हो? बोले तो आपने ही तो मेरे को शादी करा दी, अब मैं उनकी सेवा करूं कि आपकी करूं? तो माँ बाप भी उसमें खुश होते हैं कि पति की जाके सेवा करे, हमारी सेवा करना तो ठीक नहीं है अभी, कभी कोई दिन है, कभी एक दिन आके सेवा करे तो वो तो ठीक है। तो इस तरीके से कुल देवता की कृपा से उसने भगवान की भक्ति दी है, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कुल देवता को माता पिता की तरह सम्मान करना चाहिए अपनी जगह पर। हरे कृष्ण।